में सच्चे मार्ग में दृढ़ कर सकें। और उसके पश्चात दूसरे अध्याय के अंदर सम्यक दर्शन के कारण बताया। उसने कहा कि कोई भी पंचेंद्रीय जीव है, हव्य है, पर्याप्तक है, संगी है, तो वो चारों गति में हो, चाहे नरक गति में हो, चाहे तिर्यंच गति में हो, मनुष्य देव गति में हो, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। कहीं जा करके देवता उसे जाति स्मरण करा दे, उसे सम्यक दर्शन ग्रहण करा देते हैं, कहीं पूर्व भव का जाति स्मरण हो जाता है, नरक में वेदना का अनुभव करते हुए कई जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता है। तो हम सब तो मनुष्य हैं, मनुष्य गति में गुरुओं के उपदेश को सुन करके, भगवान के दर्शन करके, तीर्थ की यात्रा करके अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त करना और सम्यक दर्शन को दृढ़ करना है। तो हमने प्रारंभ से लेकर 48 पेज तक आपको 3 चैप्टर के माध्यम से सम्यक दर्शन की बात बताई है। तीसरे चैप्टर में आपने अनेक ग्रंथों के माध्यम से सम्यक दर्शन को जाना, और उसका सार ये निकला है कि आज पंचम काल में सराग सम्यक दर्शन है, प्रथमोपशम और क्षयोपशम, यानी औपशमिक और क्षयोपशमिक, ये दो सम्यक दर्शन ही हो सकते हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन आज नहीं मिल सकता, क्योंकि केवली और श्रुत केवली का अभाव विदेह क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन हमारे भारत क्षेत्र में केवली श्रुत केवली का अभाव है, इसलिए कोई भी जीव क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। अब आज मैं आपको ले चलती हूँ थोड़े से में संक्षेप में वीतराग सम्यक दर्शन। वीतराग सम्यक दर्शन शब्द से ही झलकता है, जहां राग बीत गया है माने राग खत्म हो गया है, जहां वीतराग अवस्था प्राप्त हो गई है, ऐसी स्थिति में जो सम्यक दर्शन होता है वह महामुनियों को ही होता है। यहाँ की जो परिभाषा है, एक तो क्षायिक सम्यक दर्शन को भी किसी अपेक्षा से वीतराग सम्यक दर्शन कहा, क्योंकि वहां भी 7 प्रकृतियों का पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, लेकिन वो चतुर्थ गुणी स्थान वर्ती को भी हो सकता है, सराग होते हुए भी उसको वीतराग सम्यक दर्शन कहा। लेकिन ये आध्यात्मिक भाषा में हम वीतराग सम्यक दर्शन किसको कहते हैं ये आप जानिए। अध्यात्म भाषा में वीतराग सम्यक्त का लक्षण देखिए। अब आप पेज नंबर 48 48 पर आ जाइए। निश्चय सम्यक्त ही वीतराग सम्यक्त। तो निश्चय सम्यक्त क्या है? निश्चय नहीं न निश्चय चारित्रा विना भावी निश्चय सम्यक्तम वीतराग सम्यक्तम भण्यते। ये समय सार की गाथा नंबर 13 में आचार्य अमृत चंद्र सूरी ने टीका में कहा। आचार्य कुंद कुंद की भाषा को अमृत चंद्र सूरी ने समझा, जय सेन आचार्य ने समझा। उन्होंने अपनी अपनी टीकाओं में कुंद कुंद स्वामी की बात को स्पष्ट किया। कहते हैं निश्चय नय से निश्चय चारित्र के साथ होने वाला निश्चय सम्यक्त ही वीतराग सम्यक्त कहलाता है। ये निश्चय चारित्र 7वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है, उसके पहले नहीं। अब आपको ये होगा कि भाई गुणस्थान क्या है? देखो गुणस्थान 14 होते हैं, उनमें से जो सम्यक दृष्टि गृहस्थ हैं उनके चौथा गुणस्थान, 4 गुणस्थान मतलब उनमें से चौथा गुणस्थान है। जिन्होंने देश व्रत ले लिया, प्रतिमाधारी हो गए, क्षुल्लक अलक हैं, ये सब पंचम गुणस्थानवर्ती हैं, देश संयम को धारण करने वाले, और सकल संयम को धारण करने वाले मुनिराज 6ठे 7वें गुणस्थान में होते हैं। तो आज भी 6ठा 7वां गुणस्थान है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो निश्चय में परिणत कराने वाला 7वां गुणस्थान यानी 7वें गुणस्थान के 2 भाग किए, एक स्वस्थाना प्रमत्त और एक सातिशय अप्रमत्त। माने शुरुआत में 7वें गुणस्थान का प्रारंभिक चरण जो है वो आज के संतों को होता है, 6ठा 7वां 6ठा 7वां। जैसे कोई झूला झूलता है तो एक जगह नहीं टिकता, कभी इधर कभी उधर हिलता रहता है। तो इसी प्रकार से संतों का गुणस्थान 6ठा और 7वां। आहार करते समय भी एक क्षण के लिए आत्मा के प्रति अनुराग जाता है, अंतर्मुख के लिए उनका सातवां स्थान हो जाता है, लेकिन वो प्रथम चरण वाला है। और दूसरा चरण है सातिशय अप्रमत्त, माने उसमें अतिशय आ जाता है। इसका मतलब क्या है, उनके कर्मों की निजरा और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। कब, जब वो आत्मा के ध्यान में एकदम लीन हो जाते हैं, उन्हें अपने पीछे का मंडल तक का भान नहीं रहता, अपने शरीर पर चींटी रेंग रही है या सर्प चल रहा है ये भी नहीं भान रहता। जैसे आचार्य शांति सागर महाराज के शरीर पर कई बार सांप आया, क्रीड़ा करके चला गया। जो लोग आज जिनके मिथ्यात्व कर्म का उदय होता है नहीं स्वीकार कर पाते, कहते हैं ये तो ऐसे कहने की बात है। अरे जिन्हें देखा है आज भी वो मौजूद हैं, और उनके दर्शन करने वाली ये आंखें मौजूद हैं ज्ञानमती माता जी की, जिनके शरीर पर चींटियां चढ़ गई, घाव बना दिया, लाल लाल शरीर हो गया, और जब लोगों ने जाकर थोड़ी दूर पर शक्कर गुड़ ये सब चीजें रख दी, चींटियां उतर उतर करके जाने लग गई, सारा शरीर लहूलुहान हो गया, और आचार्य जी का शरीर साफ किया गया लेकिन उफ तक नहीं किया। तो ये क्या है, ये तत्व ज्ञान का सच्चा स्वरूप है। उस समय मैं मानती हूँ कि आचार्य जी को क्षण भर के लिए जरूर सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान हुआ होगा, क्योंकि जब उन्होंने अपने शरीर से पूरी तरह से नाता तोड़ दिया, ऐसे गुण स्थान की बात यहाँ कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में निश्चय चारित्र प्रकट होता है, और तब उनका सम्यक्त निश्चय सम्यक्त बन जाता है। उस सम्यक्त को वीतराग सम्यक्त कहा, ये आपको अब समझना है, क्योंकि अब हम वीतराग सम्यक दर्शन की ओर चल रहे हैं। अभी तक आपने सराग सम्यक दर्शन को पढ़ा, जो हमको आपको सबको हो सकता है, आज के संतों को भी होता है। किसी बिरले संत को वीतराग सम्यक दर्शन थोड़ा सा स्पर्श भी कर ले तो समझो उनके कर्मों की निजरा बहुत अधिक हो सकती है। फिर आगे कहते हैं कि शुद्धात्मा की उपलब्धि ही निश्चय सम्यक है। शुद्धात्मा क्या है, स्फटिक के समान जो एकदम शुद्ध परमात्मा है, जो हम सबके शरीर के अंदर छिपा हुआ है, दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं उसी का तो चमत्कार है। अगर वो आत्मा अभी शरीर से निकल जाए तो आपका शरीर क्या मुर्दा हो जाए, और जरा सी देर में उसे सब लोग उठा के ले जाएंगे, लेकिन जिसका चमत्कार है वो हमें दिख नहीं रहा, और जो दिख रहा है वो उसी के चमत्कार से चल रहा है। तो ऐसे शुद्धात्मा की उपलब्धि कहते हैं परम समाधि काल में नव तत्वों के मध्य शुद्ध निश्चय ने से एक शुद्धात्मा ही प्रद्योतित होता है। वहां जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष पुण्य और पाप ये इन नौ को नौ तत्व भी कहा है और नौ पदार्थ भी। इन नौ पदार्थों के बीच में, नौ तत्वों के बीच में एक शुद्धात्मा केवल प्रद्योतित होता है। का मतलब क्या है कि केवल एक शुद्धात्मा में जिनका ध्यान लीन हो जाता है, भगवान बाहुबली जिन्होंने 1 साल की तपस्या के बाद एकदम शुद्धात्मा की उपलब्धि की, और इधर से भरत का आना और उधर सातमा की उपलब्धि होना, छपक श्रेणी पर चढ़ना एक साथ हो गया और बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान हो गया। लोगों ने कहा कि भरत बाहुबली को शल्य थी कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, नहीं, शल्य तो मिथ्या दृष्टि को होती है, बाहुबली को कोई शल्य नहीं थी, विकल्प था, निर्विकल्प नहीं हो पाए थे। विकल्प ये था कि मुझसे भरत को कष्ट हुआ, मैंने 6 खंड के अधिपति भरत की अवमानना की, तो उनको ये विकल्प हो गया कि मुझसे भरत को कष्ट हुआ। और जैसे भरत आए सामने, बाहुबली जरूर जान गए होंगे कि भरत मेरे बड़े भाई तो आ गए, वो विकल्प से निर्विकल्प में आ गए, संक्लिष्टो भरताधीशः, ऐसा आदि पुराण में शब्द आया है कि इससे उन्हें कभी कभी विकल्प हो जाता था। और भरत का आना, भगवान का छपक श्रेणी पर चढ़ना एकदम केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण हुआ, तो ये क्या था? यह शुद्ध सम्यक शुद्धात्मा ही उनके अंदर प्रद्योतित हो रहा था, और ऐसे में बाहर में उन्हें रिद्धियां हो गई, बेलें चढ़ गई, भगवान के ऊपर बेलें चढ़ गई, सर्पों ने बामी बना ली, लेकिन भगवान विचलित नहीं हुए। उनसे आ करके न जाने कितने लोग उनके शरीर को छू करके, चरणों को छू करके अपने रोगी शरीर को निरोगी बना लेते थे। तो कभी भी रिद्धियां जो है शल्य वाले को नहीं हो सकती। भगवान बाहुबली निशल्य थे, और निशल्य होने पर उन्हें सारी रिद्धियां प्राप्त हुई, पुनः आत्म रिद्धि को प्राप्त करके वे साक्षात भगवान बन गए। इसीलिए आज उनकी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। बाहुबली का जन्म स्थान क्या है? अयोध्या। भरत का जन्म स्थान अयोध्या। ऋषभ देव का जन्म स्थान तो अयोध्या है ही, और इसीलिए आज अयोध्या का विकास हो रहा है। ये समसामयिक प्रक्रिया है। आज समय की मांग थी कि अयोध्या संसार के अंदर भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति के आद्य केंद्र के रूप में प्रद्योतित हो जाए। तो महानुभाव, ये भी सम्यक दर्शन का एक अंग है। वात्सल्यंग प्रभावना, अयोध्या की प्रभावना करना, तो अपना सम्यक दर्शन भी दृढ़ होता चला जाएगा। तो वीतराग सम्यक दर्शन में बाहर की कोई प्रक्रिया नहीं होती, केवल आत्मा की अनुभूति, आत्मा की प्रतीति और आत्मा का अनुभव। यही अनुभव, अनुभूति, प्रतीति, शुद्धात्मोपलब्धि है, वही निश्चय सम्यक तो है। और वह अनुभूति निश्चय ने से गुण गुणी में अभेद विवक्षा करने से शुद्धात्मा का स्वरूप ही है, ऐसा तात्पर्य समझना। वहां फिर शरीर और आत्मा, इसका कोई भेद नहीं रह जाता। वहां पर जहाँ ध्यान ध्याता देह को न विकल्प वच भेद न जहां, जहां पर कोई भेद नहीं रहता, वह शुद्धात्मा जो है वह महापुरुष, वो ये भी नहीं सोचता कि मुझे मोक्ष जाना है या मुझे मोक्ष चाहिए। वहां मोक्ष का भी विकल्प नहीं है, मैं संसार में हूं ये भी विकल्प नहीं, केवल आत्मा की उपलब्धि। जहां कहा जाता है वहां पर व्यवहार आ जाता है, जहां निःशब्द हो जाते हैं वहां निश्चय आ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि योगी जो है वो ध्यान में लीन होता है, ध्यान में लीन होता है। ज्ञानमती माते बताती हैं, क्या चाहे शांति सागर के भाई थे वर्धमान सागर जी, और वो एक बार ध्यान कर रहे थे कहीं पर, हम लोग जा करके उनके दर्शन करने लगे, माता ने उनको भी देखा है चुल्लिका अवस्था में। तो महाराज के मस्तक पर एक चिड़िया फुदकती बार बार फुदकती बार, लेकिन महाराज के तन पर बिल्कुल भी विकृति नहीं आती थी। जब उन्होंने ध्यान छोड़ा तो बोली, हम लोगों ने पूछा कि महाराज आपके मस्तक पर, सिर के ऊपर बार बार चिड़िया फुदक रही थी, तो क्या आपको पता ही नहीं चल रहा था? बोले, बेटा मैं तो आत्मा के ध्यान में लीन था, कुछ कुछ लग रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था ये सब शरीर में हो रहा है, मेरी आत्मा तो शरीर से भिन्न है। यानी कि आज भी इस पंचम काल में भी ऐसे ध्यान करने वाले महापुरुष हैं। तो आपको निश्चय सम्यक दर्शन के विषय में जो बताया जा रहा है उसमें श्रद्धान करना कि आज वर्तमान में हम सबको नहीं हो सकता, किसी किसी महामुनि को बहुत शुद्धात्मा में लीन अवस्था में जरा सा स्पर्श तो हो सकता है, लेकिन मोक्ष जाने जैसी, छपक श्रेणी पर चढ़ने जैसी वीतराग सम्यक दृष्टि की अवस्था नहीं आ सकती। आज के स्वाध्याय में आप सबको यही सार समझना है कि शुद्ध ज्ञान की उपासना करते हुए हम अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखें, सच्चे देव सात गुरु की भक्ति करते हुए, तीर्थ आदि करते हुए अपनी आत्मा को पवित्र बनाएं। जावान